समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these of the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी।
Leaders of G7 nations reiterate their commitment to peace and stability in West Asia, affirm Israel's right to defend itself. US President Donald Trump leaves the summit early amidst latest developments in the region.
भारतीय दूतावास ने इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए तेहरान में विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला।
रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स कंट्रीज लार्जेस्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इन मानेसर हरियाणा।
और मौसम विभाग का गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 24 घंटे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Day to Combat Desertification and Drought and preparations for International Yoga Day abroad. Well, climate change has affected almost all the elements on the earth, and one such effect of this change has been on soil. And to make people aware of soil degradation and draw public attention to this issue, the United Nations observes the World Day to Combat Desertification and Drought on June 17th, that is today, every year since 1994.
स्वस्थ भूमि संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का आधार है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अधिक हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है, फिर भी हम इस प्राकृतिक पूंजी को खतरनाक दर से खत्म करते जा रहे हैं। इसके प्रभाव खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लेकर अस्थिरता और पलायन तक वैश्विक है। रेगिस्तानीकरण, भूमि क्षरण और सूखा हमारे समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती में से है। दुनिया भर में 40% भूमि क्षेत्र पहले से ही क्षरित माना जाता है।
As the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 marks its halfway point, it is imperative to accelerate efforts to turn the tide of land degradation into large-scale restoration. If current trends continue, we will need to restore 1.5 billion hectares of land and jumpstart a trillion-dollar land restoration economy by 2030. And the theme for this year's World Day to Combat Desertification and Drought is Restore the Land. Unlock the opportunities, which shines a light on how restoring nature's foundation, land can create jobs, boost food and water security, support climate action and build economic resilience.
विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला 2025 के वैश्विक विषय के अनुरूप है और इसमें जलवायु लचीलापन, जैव विविधता और सतत ग्रामीण विकास के लिए भूमि बहाली के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यशाला में जाने माने वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, वन अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों ने भाग लिया।
Yes, and in addition to this initiative, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, is also organizing a webinar today on its Business for Environment series titled Forest and Finance, Unlocking the Power of Carbon Markets and REDD+. And this session will highlight how forest conservation, carbon markets and REDD+ mechanisms can mobilize climate finance and advance nature-based solutions for a more sustainable and resilient future. So that concludes our discussion on World Day to Combat Desertification and Drought. And Neha, now moving on to a second topic in a Dateline section, that is preparations for International Yoga Day abroad. Well, ahead of the International Day of Yoga, preparations are in full swing in India as well as abroad also. And on December 11, 2014, the United Nations General Assembly designated June 21st as the International Day of Yoga. And since then, millions of people around the globe, united by the practice of yoga, have celebrated this day each year. And this global celebration fosters unity and harmony, transcends borders and cultures, and brings us closer to a world of peace and well-being. And in 2023, the International Day of Yoga celebrations at the United Nations headquarters created a Guinness World Record for the participation of yoga enthusiasts of most nationalities.
जी अभिषेक, इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा उत्सव है जो सभी की भागीदारी का स्वागत करने के साथ ही उसे महत्व भी देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन क्षेत्र में होगा, जिसका विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इसमें भाग लेने वालों में से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और कर्मचारी तथा न्यूयॉर्क में विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल होंगे। इसका लक्ष्य योग को एक व्यापक आंदोलन में बदलना है जो स्वास्थ्य पर जोर देता है और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देता है।
Yes, and meanwhile, yoga is rapidly gaining popularity in Croatia and becoming a part of people's daily life in this country, where Prime Minister Narendra Modi is visiting tomorrow to strengthen bilateral relations. And Mr. Modi, in the third and last leg of his three-nation tour, will arrive in the capital Zagreb tomorrow afternoon, and we have more details from a correspondent.
As the sun rises over the Adriatic coast, the beaches of Croatia come alive, not just with tourists, but with yoga mats and chanting voices. Yoga practitioners in Zagreb are excited both for International Yoga Day and the visit of the Prime Minister Narendra Modi. Yoga has found deep roots in Croatia. One of the yoga instructors in Zagreb, Swami Vivek Puri, said that more people are accepting yoga year by year after the introduction of International Yoga Day.
We start with people didn't know so much about yoga, maybe laughing. But slowly, slowly, with our practicing, with our yoga class, thousands and thousands of people of Croatia practicing yoga, especially now after International Yoga Day.
To celebrate the International Day of Yoga, the Embassy of India in Croatia is organizing a series of events throughout the country. From Zagreb, Croatia, Sanjay Singh for Akashwani News.
और अब समय है क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
In Croatia, from its capital Zagreb to beach cities Split, Indian food is popular among Croatians and tourists, where Prime Minister Narendra Modi is arriving tomorrow to script a new chapter of relations between both countries. And the craze of Indian cuisines in this small but very beautiful Central and Southeast European country is growing fast, as many Croatian chefs are now learning how to roll chapatis and tempas spices. And we have more from our correspondent covering Prime Minister's Croatia visit.
People from India in Croatia and Croatian friends of India are excited ahead of the Prime Minister's visit to this land of culture and castles. They are happy to see India's shining soft power in form of yoga, Ayurveda and delicious Indian food. Listen what people in Croatia are saying about Indian food.
My name is Slaven and I live in Berlin, but I come from Zagreb, and it's delightful to have such a wonderful place, such a restaurant with Indian food. We are both very big fans of the Indian food, and we love to eat it here at least once per month.
My name is Jelena. I come from Zagreb. I enjoy Indian food very very much. My favorite meal is tikka masala and naan.
Several Indian restaurants have opened in major cities like Zagreb, where locals are enjoying dishes like butter chicken, biryani, samosas, and masala chai. The rich flavors of Indian spices are appealing to Croatian taste buds and serving as a delicious bridge of cultural connect. Sanjeev Singh from Zagreb, Croatia.
दक्षिणपुर रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल मार्गों पर हाथियों को होने वाले नुकसान से बचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एआई आधारित एलिफेंट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के सहारे एलिफेंट कॉरिडोर में हाथियों को बचाने की नई पहल पेश कर एक मिसाल कायम की है। इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि तकनीक के जिम्मेदार उपयोग का भी प्रयास किया गया है। आइए जानते हैं अपने संवाददाता से इस बारे में विशेष रिपोर्ट।
रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की टक्कर से हाथियों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने एआई आधारित एलिफेंट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। रेल प्रशासन एलिफेंट कॉरिडोर वाले रेल खंडों में हाथियों की सुरक्षा के लिए 15 करोड़ की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एलिफेंट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगा रही है। इस सिस्टम के ट्रायल और जाँच के लिए रेल मंडल द्वारा उद्योगपति अनंत अंबानी के गुजरात जामनगर स्थित वंतारा अभयारण्य से दो हाथियों को लाया गया है। चक्रधरपुर के पास कल और रेलवे ट्रैक के पास हाथियों के साथ सिस्टम का परीक्षण किया गया। वन क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों के लोको पायलटों को इस तकनीक से मिलने वाले अलर्ट से वे रेलवे लाइनों को पार करते समय हाथियों को बचाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रेन की गति धीमी कर देंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता से आए इस प्रोजेक्ट के अधिकारी विकास कुमार पटेल ने इस बारे में आकाशवाणी समाचार को विस्तृत जानकारी दी।
हम लोग एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम EIDS सिस्टम के लिए अभी हम लोग टेस्टिंग किए और यहाँ हाथी बुलाए और यहाँ OFC डाला हुआ है, तो हाथी जैसा 20 मीटर दूर में आएगा OFC से, उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, एक नया सिस्टम लगेगा, उसको कैप्चर करेगा और रेलवे को बता देगा सिस्टम को कि हाथी आ गया है, और उसी हिसाब से स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, ये लोग को सब इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, तो और गाड़ी को रोक देंगे या धीरे कर देंगे या पूरा स्टॉप कर देंगे।
हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत एक बड़ी समस्या रही है। वन विभाग भी इस पर कई बार आपत्ति जता चुका है। AI आधारित ये नई तकनीक वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिक्रमा के लिए चाईबासा से अपने सहयोगी दिलीप कुमार बनर्जी के साथ रांची से शिल्पी की एक रिपोर्ट।
Andhra Pradesh's natural and cultural legacy received a major boost with Belam Caves being declared as a geo heritage site by the Geological Survey of India. The recognition marks a fresh chapter in the state's vision to integrate tourism, wellness and conservation. We have a report.
In a proud moment for Andhra Pradesh, the famed Belum Caves in Nandyal district have been officially declared a geo-heritage site by the Geological Survey of India. Known as India's second largest natural cave system, Belum Caves are not only a geological wonder but also a cultural landmark carrying centuries of hidden history beneath their limestone ceilings. With this new recognition, the Andhra Pradesh government is set to step up its efforts in developing Belum Caves into a world-class tourist and wellness destination. Adding to its spiritual and ecological appeal, a Yoga Andhra session was recently conducted at the caves as part of the statewide Yoga Awareness campaign. This renewed focus places Belum Caves not only as a geological treasure but as a symbol of Andhra Pradesh's commitment to combining heritage, health and sustainable tourism for future generations. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
As the monsoon made its comeback across the state of Maharashtra, so did the children to their schools after the long summer vacation. The beginning of the new academic year witnessed enthusiastic scenes across various schools, with the school education department introducing numerous initiatives to welcome students back. We have more from a Mumbai correspondent.
Colorful decorations and beautiful paintings adorning school walls, heaps of sweets, flowers and school supplies waiting to be distributed to students, and school authorities eagerly waiting the return of smiling young faces. Such were the scenes across Maharashtra yesterday on the first day of the new academic year. Students were welcomed amidst the beats of dholes and tasha, and their foot impressions were taken to symbolize their first step back into the classroom. Maharashtra ministers, people's representatives and senior officers were present at various locations to welcome students. Chief Minister Devendra Phadnavis was present at the Zilla Parishad School in Durves, Palghar, where he welcomed the students. Deputy Chief Minister Eknath Shinde participated in a program in Kodoli, Satara district, while Deputy Chief Minister Ajit Pawar welcomed students in Daund. In Tungandigar village in Nashik, students were taken in a procession on bullock carts in a unique celebration. This school has 74 students from tribal communities. At the Tulzapur Nagar Parishad School in Dharashiv district, students were felicitated with phetas, flowers and sweets. In Chhatrapati Sambhajinagar, children entering school for the first time were welcomed with aarti and showers of flowers. The joyful and heartfelt welcome to students marks a hopeful and enthusiastic beginning to the new academic session across state. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की महिला टीम और आज और कल अर्जेंटीना की महिला टीम के साथ खेलेंगी। कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद भारत अब अर्जेंटीना के साथ शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल करना चाहेगा। भारत इस समय 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है और अर्जेंटीना के साथ कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अर्जेंटीना अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।
Yes, and the first ever Hockey India Masters Cup 2025 women is set to begin in Chennai, Tamil Nadu tomorrow. And the 10-day tournament will conclude on the 27th of this month with the final match. The opening clash will be between Himachal and Maharashtra tomorrow at 6 a.m., followed by another clash between Karnataka and Kerala at 7:30 a.m. A total of 8 teams are going to participate in the tournament, with Himachal, Karnataka, Maharashtra and Kerala in Pool A, while Odisha, Haryana, Punjab and Tamil Nadu in Pool B. The inaugural edition of this pioneering tournament marks a new chapter in Indian hockey, offering a dedicated platform for veteran players. And moving on to some more news and in some defence news, the Indian Army contingent will participate in the 8th edition of the biennial India-French joint military exercise Shakti. The exercise will be conducted at Camp Larzac-la-Cavalière in France from the 18th of this month to the 1st of next month. The Indian contingent of 90 personnel has been represented primarily by a battalion of the Jammu and Kashmir Rifles. And the French contingent of 90 personnel will be represented by personnel from the 13th Foreign Legion Half Brigade. And the exercise Shakti is biennial training engagement between the Indian and French armies aimed at enhancing interoperability, operational coordination and military-to-military connection. And this edition will focus on joint operations in a sub-conventional environment, with training being conducted in semi-urban terrain. And according to the Minister of Defence, exercise Shakti underscores the growing defence cooperation between India and France and will strengthen strategic ties between the two friendly nations. And moving on to some business news, the benchmark domestic equity indices ended in negative territory today amid mixed global cues and selling pressures across most sectors barring IT. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex lost 213 points or 0.26% to close at 81,583, and the National Stock Exchange Nifty 50 slipped 93 points or 0.37% to settle at 24,853. And India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. And Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. Today we focus on affordable and healthcare for all.
Over the last decade, India's healthcare system has undergone a remarkable transformation. Flagship initiatives like Ayushman Bharat have provided financial protection to nearly 55 crore people. While under the Ayushman Vaya Vandana scheme, the health assurance benefits have been extended to all senior citizens aged 70 and above. The Ayushman Bharat digital mission has modernized healthcare delivery, with over 78 crore Ayushman Bharat health accounts created, enabling seamless access to personal health records. The establishment and expansion of AIIMS across multiple states, including the first ever AIIMS in the Northeast, reflects the government's strong commitment to decentralized and equitable medical education and tertiary care. India also took early and bold steps during the COVID-19 pandemic, from airport screenings before the case to early mask advisories, the formation of a vaccine task force, and a prompt nationwide lockdown. Guided by the vision of health for all, the government has made unprecedented strides in expanding access, improving quality, and ensuring affordability. With Vishnu, Bhanu Pratap Singh.
अब आइए बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember Odia social reformer Utkalmani Gopabandhu Das, who died on the 17th of June 1928. Das's crusade against untouchability, advocacy of widow remarriage, campaign for literacy, particularly vocational training, and above all, a deep commitment and compassion for poor and destitute have immortalized.
Gopabandhu Das was born on 9th of October 1877 in Suwandho village near Puri, Odisha. In 1909, he established Satyabadi High School in Sakhigopal, which was inspired by the Deccan Education Society. The school operated in the Gurukul tradition with an aim to impart a liberal education on a non-sectarian basis.
Das became the first president of Utkal Pradesh Congress Committee in 1920. Holding the post until 1928, he welcomed Gandhiji to the province in 1921. Das was arrested in 1922 when he received a 2-year prison sentence. Gopabandhu became All India Vice President of the Lok Sevak Mandal in April 1928. He became ill while attending a society meeting in Lahore and died on the 17th of June 1928.
We also remember independence activist Mani, a resident of District Amritsar, Punjab, who died on 17th of June 1919. Mani was active in organizing a hartal on 6th of April 1919 at Amritsar as part of the nationwide call of hartal given by Mahatma Gandhi to protest against the Rowlatt attack.
Mani was charged for killing Sergeant Rowland. He was executed on the 17th of June 1919.
We remember freedom fighter Prabhavati Namdeo, a resident of Jabalpur, Madhya Pradesh. She took part in the civil disobedience movement in April 1932 and encouraged many other women to join it. She was arrested and imprisoned in the Jabalpur district jail and died in the prison due to tortures on 17th of June 1932. We salute the brave daughter of the country.
We remember independence activist Mundar, a close associate of Rani Lakshmibai, a resident of Jhansi, Uttar Pradesh. Mundar joined the First War of Indian Independence in 1857 and fought against the British under the command of Rani Lakshmibai. Mundar took part in driving the British out from Jhansi and its surrounding areas, including Koonch, Kalpi and Gwalior. The British, however, struck back and reached Jhansi in 1858. Mundar was killed while fighting against the British in Gwalior and later cremated on the 17th of June 1858 at Gwalior.
We also remember martyr Atta Mohammed, who took part in the First War of Independence in 1857. He fought the British at several places in the Bombay Presidency.
He was caught by the company troops in the course of an engagement and tried for desertion and mutiny against the British authority. Mohammed was sentenced to transportation for life in 1857. He died in the cellular jail on the 17th of June 1858.
And we are also remembering Mumtaz Mahal, the exalted one of the palace-born Arjumand Banu Begum, who passed away on this day in 1631. She was the Empress Consort of the Mughal Empire from 1628 to 1631 as a chief consort of the 5th Mughal Emperor Shah Jahan. And the Taj Mahal in Agra, often cited as one of the wonders of the world, was commissioned by her husband to act as a tomb.
आज राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि है। राजमाता जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी। राजमाता जीजाऊ का जीवन त्याग, धर्म, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा है। उनका जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे मालोजी राव जाधव की पुत्री और शाहजी भोसले की धर्मपत्नी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय है शिवाजी महाराज की माँ होना। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह संस्कार भी देती है, और जीजाओं ने शिवाजी को न केवल जन्म दिया बल्कि उन्हें स्वराज, नीति, न्याय और वीरता का मार्ग दिखाया। राजमाता जीजाओं ने बालक शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की गाथाएं सुनाकर उनके भीतर स्वराज और धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। जब शिवाजी कठिन संघर्षों से जूझ रहे थे, तब जीजाऊ उनके सबसे बड़े संबल और मार्गदर्शक बनी।
Yes, and moving on, Kendrick Lamar Duckworth was born on this day in 1987. He is an American rapper, singer, songwriter, and record producer, regarded as one of the greatest rappers of all time. He was awarded the 2018 Pulitzer Prize for Music, becoming the first musician outside of the classical and the jazz genres to receive the award. Let's listen in to a hit track of his.
I pop the pain away, I slide the pain away, I pop the pain away, I slide the pain away. Too late, you set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the guy.
असम के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, महान कवि, गीतकार, नाटककार, संगीतकार, फिल्मकार और स्वतंत्रता सेनानी ज्योति प्रसाद अग्रवाला की आज जयंती है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला न केवल एक कलाकार थे बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने असम की आत्मा को गीतों, नाटकों और फिल्मों के माध्यम से स्वर और दृश्य दिए। उन्हें असमिया सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। 1935 में बनी उनकी फिल्म जॉयमती असम की पहली फीचर फिल्म थी। उनके लिखे गीत, जिन्हें ज्योति संगीत के नाम से जाना जाता है, आज भी असम के जनमानस की आत्मा में जीवित है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सिपाही थे और उनकी लेखनी ने युवाओं में चेतना जगाने का काम किया।
Yes, and Jyoti Prasad Agarwala was deeply revered for his creative vision and output, and is popularly called the Roop Konwar of Assamese culture. And his death anniversary, that is today, is observed as Shilpi Divas or Artist Day in his honor. And moving on, Scott Edward Atkins was born on this day in 1976. He is an English actor and martial artist. He gained prominence with his portrayal of the Russian prison fighter Yuri Boyka in the American martial arts film Undisputed 2, Last Man Standing in 2006, a role he reprised in his sequels Undisputed 3, Redemption in 2010, which won him an Action and Film Award for Breakout Action Star, and Boyka Undisputed 2017, which won him a Jackie Chan Action Movie Award for Best Action Movie Actor.
भारतीय संगीत जगत की सशक्त और अद्वितीय आवाज सोना महापात्रा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। सोना महापात्रा न सिर्फ एक प्रसिद्ध गायिका हैं, बल्कि गीतकार, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाने वाली प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी हैं। उड़ीसा में जन्मी सोना ने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद कॉरपोरेट दुनिया से अपना करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी सच्ची पहचान संगीत की राह चुनी। सोना महापात्रा की मधुर आवाज में गाए उनके सुपरहिट गानों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया है। सोना महापात्रा की डॉक्यूमेंट्री शट अप सोना ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खूब तारीफें बटोरी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, सोच और स्त्री सशक्तिकरण की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वे उन चंद कलाकारों में से हैं जो कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का माध्यम मानती है। आज उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वास्थ्य, सफलता और संगीत की अनवरत यात्रा की कामना करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं सोना महापात्रा के गाए खूबसूरत गीत।
दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। चली थी कल बा
Pace and also tennis stars Venus Williams and Leander Pace also celebrate the birthday today.
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करने की नमस्कार.